जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमोनतीरा वनचारियं यमुनातीरा वनचारियं जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe Jai Jai Ganna Jai Jai Ganna Jai Bala Deva Jai Subhadra Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gauranitai, Gaurariba, Riba, Hariba. Hare bol taya jaya prabhu pa Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam ततो जयामुदीरयेत्। नश प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद नौ अध्याय दस श्लोक संख्या 55। प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन प्रश्चर्य अवनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता अर्हता अहरत अहरत मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन रश्यया वनता सती रश्यया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः भर्तुः सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन रश्ययावनता सती रश्ययावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः भर्तुः सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन रश्यया वनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन हर्षया वनता सती मर्तो सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन अक्षयावनता सती ह्रिया ह्रिया च भावज्ञा मर्तुः सीतारन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन अक्षयावनता सती व्याधया च भावज्ञा मत्तो सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन हर्षया वनता सती प्रिया प्रिया च भावज्ञा मत्तो सीता हरन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन हर्षया वनता सती निया च भावज्ञा अश्रु सीतारन्मनः प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन हर्षया वनता सती व्याहृया च भावज्ञा मत्तो सीता हरन्मनः अनुवाद और तात्पर्य हिज ज्वाइंट रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चाय श्रद्धार्थ इस प्रकार है प्रेमना प्रेमनानुवृत्तया प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक पति की सेवा करने के कारण शीलेना ऐसे उत्तम आचरण के द्वारा रशया अवनता सदैव पति के प्रति विनीत एवं उसे संतुष्ट करने के तैयार सती सती साध्वी भिया भया भयभीत भयभीत होने के कारण हरिया लज्जा से च भी भावज्ञ भाव को समझकर भर्तुहु अपने पति को सीता सीता देवी ने हरत मोहित कर लिया मनः मन को अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइंट रेस इसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की इच्छा अनुवाद सीता देवी अत्यंत विनीत आज्ञाकारिणी लज्जालु तथा सती थी और अपने पति के भाव को समझने वाली थी इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी तात्पर्य जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं एक पत्नी व्रत उसी तरह माता सीता आदर्श पत्नी हैं ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बना बन जाता है यदाचरति श्रेष्ठ एवेतरो जना महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं यदि राजा नेता तथा ब्राह्मण शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करे तो सारे जगत स्वर्ग बन जाएगा निस्संदेह इस जगत से नारकी दशाओं का नाम और निशान मिट जाएगा इस प्रकार श्री भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र की लीलाएं शीर्षक दसवें अध्याय का भक्तिविधान तात्परिपूर्ण हुआ। मम ज्ञानविरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशातान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यै च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कल के श्लोक में भगवान रामचंद्र का जो आदर्श पति के रूप में, आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, एक पत्नी व्रता धरो राजर्षि चरित शुचिः स्वधर्म गृह मेध्यम शिक्षायम स्वयं आचर। स्वयं अपनी आचरण के द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया कैसे एक पति को होना चाहिए, हाउ ए हस्बैंड शुड कंडक्ट हिज लाइफ। अभी आज के श्लोक में सीता देवी का महिमा है। सीता देवी किस प्रकार भगवान रामचंद्र की पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में अपना आचरण किया, जिसके द्वारा सीता देवी ने भगवान रामचंद्र का मन को हर लिया। तो सबसे पहला लिखा गया है, प्रेमना अनुवृत्तया शीलेना। शीलेना शीलता, प्रेमना अनुवृत्तया शीलेना। जैसे एक पुरुष का शोभा है वीरता इत्यादि, एक स्त्री का शोभा है शीलता पवित्रता। तो एक विवाहित स्त्री का पवित्रता या शीलेना शीलता कैसे पता लगता है, प्रेमना अनुवृत्तया। जब उनकी पति या उस स्त्री की पति के प्रति उनका प्रेम रहता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा प्रेम जो है भगवान में होना चाहिए, इस संसार से विरक्त होना चाहिए, कोई संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये उपदेश जो है वो दिया गया है पुरुषों को, स्त्रियों के लिए ये उपदेश नहीं है। स्त्रियों का प्रेम उनकी पति में होना अति आवश्यक है। अगर कोई स्त्री कहती है मेरे पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, बच्चे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, बस अभी मैं तो मुक्त हो गई हूँ, मुझे वैराग्य लेना है, ये अशीलता का सूचक है। पति के प्रति आसक्त होना और बच्चों के प्रति आसक्त होना, परिवार के प्रति आसक्त होना, वो स्त्री के लिए अच्छा है और उनकी भक्ति में प्रगति के लिए वो बहा सहायक है। सारे शास्त्र के जितने भी खासकर उपदेश है, प्राय उपदेश, वो पुरुषों के लिए है और पुरुष इन उपदेशों को स्वीकार करके भक्ति भजन करते हुए जब उनके घर में उनकी पत्नी उनको सहयोग देती है तो उस समय उस पत्नी को भी वो भक्ति का फल प्राप्त होता है, अपने आप उस भक्ति में प्रगति कर लेती है। यार अभी तो आजकल की वैदिक सभ्यता इतना सुचारू ढंग से नहीं है, इसलिए बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता में सिस्टम ये है और विधि ये है। पहले जमाने में या प्रभुपाद जी के पहले भक्तिसिद्धांत ठाकुर भी, कभी उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा नहीं दिया। दीक्षा दिया जाता है पुरुषों को, और उस परिवार वालों के गुरु उस परिवार के पुरुष के पुरुष को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और पुरुष जो हैं वो एक आध्यात्मिक गुरु का शरण लेते हैं। यानी जो गुरु का उपदेश है वो उस घर के जो पुरुष है पति वो स्वीकार करते हैं, और उस उपदेश के अनुसार अपना परिवार को संभालते हैं। यानी जो घर के जो मुखिया है, ये पुरुष है, ये पति है, उन परिवार वालों के गुरु है। तो ये वैदिक सभ्यता है। तो पति के प्रति प्रेम, खास करके प्रेमना अनुवृत्तया, ये शब्द अति महत्वपूर्ण है। अनुवृत्तया का अर्थ क्या है? अनुवृत्तया का अर्थ है उनकी सेवा करना। अनुवृत्ति, वृत्ति का अर्थ है कार्य। अनुवृत्ति का अर्थ है एक व्यक्ति के एक व्यक्ति को संतुष्ट करने वाला जो कार्य है उसको अनुवृत्ति कहा जाता है। अनु का अर्थ है फॉलो। अनु का दूसरा अर्थ है 24 घंटा, यानी हमेशा। यानी हमेशा अपने पति को संतुष्ट करने वाली जो सेवाओं में रत रहना, ये पत्नी का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। तो ये अनुवृत्तया प्रेमना, ये जो अनुवृत्तया कैसे होना चाहिए? प्रेमना, प्रेम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि औपचारिकता से होना चाहिए, केवल एक ड्यूटी के रूप में नहीं होना चाहिए। ये प्रेम और जो सेवा है वो दोनों साथ साथ में जाता है। प्रेम के बिना सेवा नहीं होता है, सेवा के बिना जो प्रेम है उसका भी कोई उपयोग नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, आप होटल में जाओगे तो उधर का वेटर भी आपकी सेवा करता है, लेकिन ये सेवा प्रेम पूर्वक नहीं होता है। जब आप घर में आते हो तो स्वयं माँ आपको परोसती हैं। जो वेटर ने परोसा था होटल में, उधर भी माँ परोस रही है, लेकिन माँ का जो परोसना जो है, उनका जो सेवा है, वो प्रेम से युक्त रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा ने कहा प्रेम पूर्वक सेवा। सेवा और प्रेम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जितना आपका प्रेम है एक व्यक्ति के प्रति, उतना ज्यादा सेवा करते हैं, और जितना ज्यादा सेवा करोगे उतना प्रेम बढ़ता है। तो ये प्रेम और सेवा को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि घर के जो स्त्रियां हैं वो घर में सेवा कम करती हैं, वो खाना भी नहीं पकाती हैं, किसी नौकरानी को रख लेती हैं। इसका अर्थ क्या है? अनुरक्तया, ये जो अनुरक्ति है, प्रेम है परिवार वालों के प्रति, बच्चों के प्रति, वो नहीं है। इट इज नॉट देयर। वो नहीं होने के नाते क्या कहा गया? अशील, शीलता नहीं है। तो ये शीलता एक पतिव्रता स्त्री में, स्त्री में शीलता को कैसे प्रकाशित करती है? ये शीलता को भगवान के प्रेम के द्वारा प्रकाशित नहीं करती है। पत्नी के प्रति पति के प्रति जो प्रेम है, बच्चों के प्रति प्रेम है, उसके द्वारा शीलता को प्रकाशित करती है। अस्तित्व में भगवद गीता में अर्जुन पहले अध्याय में उन्होंने कहा कि चौथा कारण बताया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। ये चौथा कारण बताते उन्होंने कहा सामाजिक कारण बताया, यानी जब युद्ध होगा तो पुरुष मर जाएंगे। तो पुरुष मर जाएंगे, जो कुलधर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म है, वो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी को वो देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कुल धर्म को रक्षा करने वाला नहीं रहेगा, तब सबसे पहला क्या होगा? स्त्रीयेश दृष्टाश वार्षणेय, स्त्री जन का पवित्रता शीलता वो नष्ट हो जाएगा। जब स्त्रियों का पवित्रता शीलता नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो निश्चित रूप में जायते वर्ण संकरा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, अनवांटेड चिल्ड्रन वो उत्पन्न होंगे। जैसे आजकल की सभ्यता में हम देखते हैं कि माता पिता को बच्चे नहीं चाहिए, और हो जाते सोचते हैं कि कहां से पनौती आ गया, लेकिन बच्चों को पनौती के रूप में देखते हैं, कहां से शैतान प्रकट हो गया, मेरा जान खाने के लिए कदम आया है। तो माता पिता के लिए बच्चे पनौती हो गए। तो क्यों है? क्योंकि ये कुलधर्मा सनातना नष्ट होने की वजह से ये स्त्रियां उनका मन उनका शीलता खत्म हो गया है। अगर कोई स्त्री परिवार से आसक्त है, पति से आसक्त है, ये समझना चाहिए कि उनकी भक्ति में निश्चित रूप में प्रगति होगा। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवद्गीता में भागवत में एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति को ना अति वैराग्य होना चाहिए ना अति आसक्त होना चाहिए। जो अति वैराग्य दिखाता है उसके लिए भक्ति नहीं है, जो अति आसक्त होता है उसके लिए भक्ति नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक गुण है व्यक्ति है। तो इधर पतिव्रता स्त्रियां उनकी पतिव्रता धर्म को त्याग करके कोई भी व्यक्ति कोई भी स्त्री भक्ति में प्रगति नहीं कर सकती। बहुत रेयर केस है जहां इस बात को उल्लेखन किया गया है कि पतिव्रता धर्म को त्याग करके भी भक्ति में प्रगति किया। जैसे उर्मिला को उदाहरण पिछले बार मैंने प्रवचन दिया था, लक्ष्मण जी की पत्नी लक्ष्मण के साथ नहीं गई, क्यों? क्योंकि उनको मालूम था। तो उधर भी और एक व्याख्या सुनी है उर्मिला का, तो उन्होंने पतिव्रता धर्म को क्यों त्याग किया? भगवान रामचंद्र की सेवा अच्छा हो, लेकिन उस पतिव्रता का धर्म को त्याग करने में भी पति का सेवा है। क्योंकि उर्मिला जानती है लक्ष्मण की मन, लक्ष्मण 24 घंटा भगवान रामचंद्र की सेवा में है और उनकी भगवान रामचंद्र की सेवा में मुझे रुकावट नहीं पहुंचाना है। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए बहिरंगिक रूप में उर्मिला ने पतिव्रता धर्म को त्याग किया, लेकिन अंतरंगिक तरीके से पतिव्रता धर्म को उन्होंने पालन किया। तो इधर वापस इस बात के आएंगे, प्रेमना अनुवृत्तया। वैसे पुराने जमाने में, या पुराने जमाने की बात छोड़िए, मैं अपने बचपन में मैंने देखा, मेरी जो ग्रैंड मदर है और यानी मेरी दादी है, जब उनके मेरे दादा के साथ में कहीं जाना होता है, चलना होता है, वो कभी भी साथ में नहीं चली। वो कम से कम 8 या 10 कदम पीछे उनका चरण को देखते हुए चल रही थी, मैं अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। इसको अनुवृत्तया कहा गया है। ये भी एक प्रकार की अनुवृत्ति है, यानी जब चलते हैं वो ऐसा नहीं कि साथ साथ में चलेंगे या आगे आगे चलेंगे। जब पति आगे चलते हैं, पत्नी को पीछे पीछे उनकी चरण को देखते हुए चलना चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है। जब ये वैदिक सभ्यता नष्ट होता है तो शैतान जैसे बच्चे पैदा होंगे। तो ये बच्चे शैतान हैं। इसका कारण कौन है? इसका कारण ये है, शीलता नहीं होना ही यही कारण है। ये शीलता नहीं होने का कारण क्या है? प्रेमना अनुवृत्तया, पत्नी को पति से प्रेम नहीं है। आजकल के पीवन भक्त परिवार में कभी कभी सुनने को मिलता है, जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, वो ज्यादा वैरागी की बातें कहते हैं। वो पति जो है परिवार की बातें कहता है और पत्नियां वैरागी की बातें कहती है। क्यों? ये कलयुग है। वैरागी की बातें जो है पुरुष को करना चाहिए, पुरुष को अनासक्त होना चाहिए, स्त्री को आसक्त होना चाहिए। तो ये प्रेमना अनुवृत्तया शीलेना, शीलता प्रेमना अनुवृत्तया। बाद में और एक महत्वपूर्ण गुण है एक पतिव्रता स्त्री का, स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, वो क्या है? वो है प्राश्चर्य अवनता। प्रश्यया अवनता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ऑलवेज वेरी सबमिसिव एंड रेंडर टू सैटिस्फाई द हस्बैंड। हमेशा नम्र होना, हमेशा पति के बातों को हाँ कहना, ये पति पत्नी का या भार्या का स्त्री का परम कर्तव्य होता है। तब कोई कहे अगर पति गलत है तो, गलत होने पर भी हाँ मान जान, ये पत्नी का उसके हित में है। अगर वो गलत भी है लेकिन उससे बढ़कर की बात क्या है? उनकी बात को स्वीकार करना। गलत बातों को कैसे स्वीकार किया जाए, कोई उठा के आवाज उठा सकता है वो गलत है, गलत मैं क्यों सहन करूंगी। लेकिन ये सती धर्म सतीत्व के विरुद्ध है। जो सतीत्व का जो धर्म है वो गलत को स्वीकार करना सही और गलत से परे है, क्योंकि मनुष्य जो है गलतियां करना उनका प्रवृत्ति है। हो सकता है पति कोई बात उन्होंने गलत भी कह दी है, उनको शांति से स्वीकार करना, उनको हां कहना, ये पत्नी का कर्तव्य है, ये नम्रता है। नहीं तो उनको सीधा उल्टा जवाब देना, ये सब चीजें सतीत्व के ऊपर कलंक है। रशिया अवनता सती, बाद में भिया, और एक गुण है भिया। भिया का अर्थ है हमेशा डरे हुए रहना। तो डरे हुए रहना का अर्थ क्या है? ये डर क्यों उत्पन्न होता है? डर इसलिए उत्पन्न होता है, अगर आपका कोई प्रिय है, आप जिससे प्रेम करते हो, तो सबसे बड़ा डर यह है कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं वो मेरे वजह से, मेरे कार्यों से, मेरी वचनों से, मेरी आचरण से नाराज ना हो जाए। तो हमेशा ये डर होना चाहिए स्त्री में, कहीं मेरे जो पति हैं या मेरे परिवार वाले हैं, कहीं मेरे से वो मेरे आचरण की वजह से नाराज ना हो जाए। लेकिन कभी में क्या होता है, ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है। सब लोग स्त्रियों से डरते हैं कहीं ये नाराज ना हो जाए और नाराज हो गए तो उनको मनाने के लिए नाना हंगामा करते हैं। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन सती स्त्रियों का लक्षण क्या होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप में किया गया है, भिया, भयभीत होना चाहिए, डरे हुए अवस्था में होना चाहिए। तो मैं हमने देखा है हमारे परिवार में, बड़े जो अन्य सभ्य परिवारों में, ऐसा मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न होता था बचपन में कि हमेशा मेरी मदर है, माँ है या और अन्य स्त्रियां हैं, हमेशा डरे हुए क्यों हैं? तो उनको फ्री रहना चाहिए, डरे हुए क्यों रहे, हमेशा घबराए हुए रहते हैं। अगर मान लो कि कोई बच्चा बाहर गया तो आने में देर हो गया, डर रहता है। डरे हुए अवस्था में हमेशा रहना स्त्री के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो डर है उनके अंदर जो अनर्थ है उसको नाश कर देता है। जैसे भक्ति में हमने कहा था कि ये जो कंस है वो डर है, साधक को डर होता है, डर होना चाहिए, माया से डरना ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कंस जो है वो डर के प्रतीक है, वो भय के प्रतीक है। तो कंस ने क्या किया, देवकी के छह पुत्रों को उन्होंने मार दिया। तो ये छह पुत्र हमारे हृदय में अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरी को सूचित करता है। तो ये डर के वजह से या कंस के वजह से ये छह अनर्थ नाश हुए। इसका अर्थ क्या है, ये डर अति महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे को अगर डर नहीं होगा तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, एग्जाम में पास नहीं होगा। एग्जाम का डर होना आवश्यक है, या पिताजी का डर होना आवश्यक है। अगर उसको डर नहीं है माता पिता का, वो बच्चा निश्चित रूप में वो बिगड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि आजकल बच्चे लोग माता पिता बच्चों से डरते हैं, अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं, चाणक्य पंडित स्पष्ट रूप में कहते हैं, बच्चों को जैसे 5 साल की आयु से 15 साल की आयु तक उनको डंडा दिखा के डराना चाहिए, क्योंकि वो डर जो है उसको सीधा कर देता है। हमेशा स्त्रियों को भयभीत होना, डरे हुए रहना, कहीं मेरे पति मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं मुझे मेरे पति नाराज ना हो जाए मेरी आचरण से, मेरी वाणी से। क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा तो ये डर जो है वो एक वेट के बराबर है। अंदर जो है अनेकों अनेकों प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह रहता है, तो उस वो जो है वो बाहर प्रकट हो जाता है। वो डर रहेगा तो वो सब अंदर ही छुपा रहता है, और धीरे धीरे से भक्ति करने के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वो सब शांत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, क्यों डरे रहने की क्या जरूरत है, जो मन में आया वो बोल दो। ये सब जो है वो वैदिक विचार नहीं है, ये सब आधुनिक विचार है। मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, जो मन में आता है कर देना चाहिए, जो मन में आता है बोल देना चाहिए, ये मेरी सरलता है। ये सब सरलता के नाम पे फ्रैंकनेस, मैं स्पष्ट हूं, मैं केवल सामने बोल देता हूं, मैं पीछे नहीं बोलता हूं, ये सब बातें जो है ये शोभा नहीं देता है, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। हमारे अंदर कचरा है और वो कचरे को बाहर खोल के सबको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होना चाहिए, उसको दबा के वाचो वेगम मनसक क्रोध वेगम, ये सब वेग है, इन वेगों को दबा के रखना सीखना चाहिए। खाली ये जो आजकल लोग बोलते हैं, देखो प्रभु जी मैं तो स्पष्ट बोलने वाला हूँ, मैं पीछे बोलने वाला नहीं हूँ, तो स्पष्ट बोलो, कोई बोलो ही मत, कृष्ण का नाम लो, क्योंकि मालूम है सबके हृदय में क्या क्या है, केवल कचरा ही भरा हुआ है। तो खास करके जो स्त्री शरीर में जो जन्म लिया जो बद्ध जीव होता है, उनके अंदर निश्चित रूप में ज्यादा प्रकार ज्यादा इमोशंस रहता है, भावनाएं ज्यादा रहता है, वो भावना भौतिक होता है। तो ये भौतिक भावनाएं जो हैं वो निश्चित रूप में खुद के लिए भी तकलीफ है और दूसरों में तकलीफ का कारण है। तो समाज में सुखी रहना है या समाज परिवार सुखी रहना है, ये स्त्रियों की जो भावनाएं हैं वो अंदर ही दबके होना चाहिए। अगर वो बाहर प्रकट हो गया तो स्त्री के लिए भी खराब है, परिवार के लिए भी खराब है और समाज के लिए भी खराब है। ये भावनाओं को दबा के रखने के लिए क्या है, क्या कौन सा वो ढक्कन है, वो है भय। तो ये भय होना अति आवश्यक है। हमेशा ये मैं देखता था, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो हमेशा भयभीत होती थी, और कुछ भी थोड़ा सा आवाज आ गया तो क्या हुआ, मैं सोचता ये क्यों भय क्यों है। तो जैसे भगवद्गीता अगर पढ़ने लगा, मैं उपदेश देने लगा, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं, कृष्ण का शरण लो, तो उल्टा मेरे ग्रैंड मदर उपदेश देती हुई, मैंने कहा कि ये सब तुम अपने लिए रखो, हमको जैसा है वैसे रहने दो। तब बाद में मुझे पता लगा ये उपदेश जो है मेरे लिए। ये पुरुषों के लिए, ब्रह्मचारी सन्यासी और गृहस्थ पुरुष है उनके लिए है। तो अगर स्त्रियों को उपदेश दो, आप भयभीत मत रहो, कृष्ण का शरण लो, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षे कृष्ण, और ये उपदेश देंगे आपको संसार से विरक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, ये बातें ध्यान रखिए। जब शास्त्र में ये बातें आती हैं ये पुरुष के लिए है, भगवद्गीता भागवत में इन सब की बातें आती हैं, ये पुरुष के लिए है। जैसे एक फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट करके एक 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 चैप्टर अध्याय पांचवें स्कंद में, फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वन में जो भोग है उसका, यानी भौतिक संसार किस प्रकार दुखकार है और शाश्वत है। वो प्रसंग जब चल रहा था, मैं क्लास देने का, एक माता जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी ये सब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मेरा ये जो है आपके लिए नहीं है, इनके लिए ये अध्याय आपके लिए नहीं है, ये अध्याय आपके लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो इस प्रकार शास्त्र को इस प्रकार नहीं समझते, तो भगवान भगवता में कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् भयावह, अपना स्वधर्म जो है वो पालन करना चाहिए। स्वधर्म में निधर्म श्रेय, ये स्वधर्म भले हमने कल सुना दो प्रकार का है, आत्मा का स्तर का स्वधर्म है और शरीर के स्तर का स्वधर्म है। तो जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित नहीं होता है, तब तक ये शरीर का स्वधर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, करके भगवान भगवद्गीता में कहते हैं इस बात को। भगवद्गीता का जो तीसरे अध्याय और पांचवें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप में कहा, ये स्यात्म रसदेव स्यात्, ये स्यात्म तत्त्वस्य मानव तस्य कार्यम न विद्यते। इस तस्य कार्यम का अर्थ क्या है, शरीर का स्तर का स्वधर्म, यानी स्त्री का स्वधर्म जो है उसको तब तक त्याग नहीं करना चाहिए स्त्री को, जब तक ये स्यात्म रसदेव स्यात्, यानी उनकी आत्मा में ही रमण करना, आत्म तृप्त्य मानो, उनको पूर्ण तरीके से आत्म में ही तृप्त है। तो उसके बिना अगर स्वधर्म को त्याग किया जाता है तो उत्पात एव कल्पते, सारे संसार में केवल उत्पात ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये सोचना अभी तो मैं भक्ति में आ गई हूं तो मुझे ये प्रवचन में सुना है कि भागवत में एक श्लोक है कि क्या है, नृणाम पितृणाम नायम किं करो नायम ऋणीच राजन, मेरा देव ऋषि भूत आत्मा नृणाम न किं करो नायम ऋणीच राजन, सर्वात्मन शरण शरण्य, मैं तो कृष्ण के शरण में आ गई हूँ, अभी मैं सब कुछ परित कर, तो मैं सब कुछ त्याग कर लूंगी। तो ये तभी ये श्लोकों को सुन के स्त्रियों को ज्यादा दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है कि हम कौन से स्तर में हैं, तो उस स्तर के अनुसार कार्य करना अति उचित है। तो इधर क्या कहा गया है कि नम्र होना, ये उसके बाद बिया डर भयभीत होना आवश्यक है। ये भय जो है जैसे एक बच्चे को सीधा कर देता है, उसी प्रकार ये भय जो है, डर जो है, वो स्त्री को भी उनकी वाणी को, उनकी आचरण को वो सीधा कर देती है। ये भयभीत होना आवश्यक है। दूसरा क्रिया शाइनेस, शाइनेस का अर्थ है लज्जा। एक स्त्री का वास्तविक सुंदरता जो है उनकी लज्जा से है, लज्जा ही उनका आभूषण है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक स्त्री का जो सुंदरता जो है उनका शरीर या उनका उनके आभूषणों के द्वारा नहीं होता है, उनकी लज्जा ही उनका आभूषण है। भले कोई आभूषण धारण ना किया हो, अगर कोई पराय पुरुष को देख के या अपने पति को भी देख के या लज्जित हो जाती है, ये लज्जा जो है उस स्त्री का सुंदरता को बढ़ा देता है। तो ये लज्जा की वजह से भले ही उनके हृदय में अनेकों अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, वो लज्जा जो है उसको शांत करा देता है, तो उनको दमन कर देता है, इससे समाज में कोई उत्पात नहीं होगा। जैसे आजकल बहुत एक समाज में या भारत में बहुत ये चल रहा है कि किसी ने कहा कि ये जो ये होता है February 14 वैलेंटाइन्स डे, वो टाइम में बहुत होता है, खासकर कर्नाटक में बहुत होता है, तो उस दिन बहुत सारे बलात्कार होते हैं, तो पुलिस बहुत परेशान है। तब एक पॉलिटिशियन था, तो भले ही वो भक्त ना हो, हो जो ना हो, उन्हें कहा इन सब का कारण स्त्रियां हैं, क्योंकि वो बराबर कपड़े पहन ही पहनते, वो निर्लज्ज हो गए, इसका वो पुरुष कारण नहीं है। जिसने वो स्त्री के ऊपर बलात्कार किया वो पुरुष का दोष नहीं है, क्योंकि ये स्त्री का दोष है। क्यों? क्योंकि वो निर्लज्ज हो गई। अगर वो लज्जा नामक आभूषण को धारण करती तो वो लज्जा नामक आभूषण इतना आकर्षक है तो पुरुष जो है उस स्त्री को सम्मान देता है। अगर उस लज्जा नामक आभूषण को त्याग कर दिया स्त्री ने, क्या करके अपने जो अंगों को प्रदर्शन करने का वो सुंदरता को प्रकाशित किया, तो वो भी पुरुषों को आकर्षित करता है, लेकिन वो पुरुष जो है वो सम्मान के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। वो आकर्षण किस प्रकार का होगा? काम के द्वारा प्रेरित होकर आकर्षित होता है। तो अगर आकर्षण ही करना है तो स्त्रियों का स्वभाव होता है लोगों को, पुरुषों को आकर्षित करना, तो ऐसे पुरुषों को आकर्षित करे जो सम्मान के द्वारा आकर्षित हो। तो वो पॉलिटिशियन ने कहा था स्पष्ट रूप में कि अगर स्त्रियां लज्जा को त्याग किया तो वो ऐसी पुरुषों को आकर्षित करेंगे जो कुत्ते जैसे हैं। जो कुत्ते जैसे हैं वो तो कामुक तरीके से आएंगे तो बलात्कार करेंगे, तो उसमें दोष किसका है? जैसे आपने दरवाजा खोला, घर का दरवाजा खोल के वो आप कहीं चले गए, यानी आपका घर में जो चीजें वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ जो भी है, वो सब चीजों को देखभाल करें, कोई परवाह नहीं की आपने, तो दरवाजा खोल के गए, तो क्या होगा? चोर आएंगे, कुत्ते आएंगे, सब उसको बर्बाद कर देंगे। तो उसी प्रकार तो दोष उसकी किसका है? वो कुत्ते का दोष है या वो घर का मालिक का दोष है? वो कुत्ते का दोष नहीं है, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव योग करना, हाँ, वो आके घर में आके तहर का मचा देना, क्योंकि दरवाजा खुला है तो कुत्ता जाके उधर कुछ भी करेगा। तो दोष किसका है? वो घर का मालिक का है। लापरवाही जो है, परवाह नहीं करना, हम तो सर्वांश का परवाह नहीं करेंगे, कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे, या कुछ भी पहन के जाएंगे कुछ भी पहन के आएंगे, हम लापरवाही, वी शुड बी केयरलेस। तो अपने जो शीलता को नहीं ढकते हुए, लज्जा को द्वारा अपनी शीलता को नहीं ढकेंगे तो क्या होगा? कुत्ते जैसे लोगों को आकर्षित करेंगे। अगर वो लज्जा नामक वस्त्र के द्वारा अगर अपने आप को ढकेंगे और सुंदर होंगे, वो स्त्री भी आकर्षित होगी, लेकिन कैसे लोगों को आकर्षित करेंगे? पुरुषों को, जिसकी वास्तविक जो सत्ता है, जिस प्रकार की पुरुषत्व है, वैसे लोगों को आकर्षित करेंगे, वो सम्मान करेंगे। तो स्त्रियों की जो सम्मानता है,
समानता के द्वारा आकर्षण जो है वो तभी संभव है जिसके पास ये लज्जा है, तो शाइनेस। उसके बाद भावज्ञ, ये भावज्ञ अति महत्वपूर्ण शब्द है। फर्स्ट क्लास डिसाइपल इज वन हु अंडरस्टैंड्स द माइंड ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के मन को जो समझ लेता है, वो समझ के उस समझ के अनुसार कार्य करता है उनको संतुष्ट करने के लिए, वो फर्स्ट क्लास डिसाइपल है। सेकंड क्लास डिसाइपल है, दूसरी श्रेणी का शिष्य वो है जो इंतजार करते हैं बोलने से, गुरु को बाद में करेंगे। यानी गुरु के मन को समझ लेना, ऐसे गुरु गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु मन को समझ लिया, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, इसलिए टॉप क्लास गोस्वामियों ने टॉप क्लास है, क्योंकि महाप्रभु बोलने के पहले से ही रूप गोस्वामी जानते हैं महाप्रभु का मन क्या है। तो वैसे ही गुरु का मन को बिना गुरु बोले व्यक्त किए समझ जाना सबसे उत्तम शिष्य होता है। तो वैसे ही जो दूसरा श्रेणी का शिष्य वो होता है गुरु बोलने के बाद करता है, और तीसरा श्रेणी का शिष्य होता है वो बोलने के बाद भी नहीं करता। तो वैसे ही जो सर्वोच्चम उच्च कोटि की जो पत्नी है, स्त्री है, भार्या है, वो होती है पति को बोले बिना पति के मन को समझ के उस प्रकार की सेवा कर देती है। माने दूर से पति आए, बहुत थके, घर में आए तो उनको जैसे वो बैठे तो उनको पानी लेके देना, क्योंकि दूर से थका हुआ है तो पानी तो जरूरत पड़ता है, वो पति को बोलने की जरूरत नहीं पानी लेके आओ। लेकिन सेकेंड क्लास जो स्त्रियां क्या होती हैं, वो बैठी रहेगी टीवी देखते रहेगी, वो पति आगे बैठा है ये क्या है, उनको बोलने तो बाद में देखेंगे, तो पानी लेके आओ, तो ऐसा है क्या, चलो लेके आते, थोड़ी जबरदस्ती लेके देना। अरे थर्ड क्लास क्या है, पानी लेके आओ जो पति बोलता है तो फ्रिज में रखा है जाके ले लो। ये थर्ड क्लास। तो ये एक शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, क्या है वो, भावज्ञ, भाव को समझ के, भाव को समझना। ये बात को कोई स्त्री को बताने की जरूरत नहीं है, वो पुरुषों के मन में क्या चल रहा है, कि उनके मन में क्या है, खासकर के पति के मन में क्या हो रहा है, उसको समझने की विशेष कला स्त्रियों को ये दिया गया है भगवान के योजना से, या उनकी प्रकृति ऐसा है कि इतने बुद्धिमान है कि वो समझ जाते हैं कि पुरुष के मन में, अपने पति के, उसकी पति के मन में क्या हो रहा है। वो टेलीपति बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो समझ जाते हैं, वो पति को बोलने की जरूरत नहीं है, बोले बिना वो समझ जाते हैं। ये प्रसंग हमको दिखाई पड़ता है कि जब व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे भाग रहे थे, कुछ युवतियां वो नहा रही थी, वो पूर्ण नग्न थी, और सुखदेव गोस्वामी 14 साल के थे और वो भी नग्न भाग रहे थे, लेकिन उन स्त्रियों ने उनको देखा, सुखदेव गोस्वामी को देख के उनके मन में कोई विकार नहीं था, ना आया, उनके अपने शरीर को नहीं ढका, क्यों, क्योंकि उनको मालूम था सुखदेव गोस्वामी के मन में जरा सा भी स्त्री पुरुष का भेद नामक कोई चीज ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं क्या है। लेकिन जैसे व्यासदेव आए तुरंत अपने शरीर को ढक लिए, क्योंकि व्यासदेव को मालूम था कि ये स्त्री पुरुष है, भले ही व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है, लेकिन फिर भी ये स्त्रियों ने क्या किया, अपने शरीर को ढक लिया, क्योंकि पुरुष के मन में क्या हो रहा है वो जानने की जो कला है स्त्रियों को भगवान ने स्वाभाविक तरीके से दिया है। तो देनो, उनको कोई विशेष तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, उनके सूक्ष्म बुद्धि है भगवान ने दिया है, वो समझ जाते हैं। लेकिन तकलीफ यह है कि समझने के बाद भी बोलने दो ना, तब करेंगे, बोलने के बाद भी नहीं करेंगे। ये है सेकेंड क्लास, यानी दूसरे शब्दों में प्रत्येक स्त्री फर्स्ट क्लास बन सकती है। कैसे बन सकती है, केवल अनुवृत्तया, प्रेमना अनुवृत्तया, और उनकी जो प्रति, उनके अंदर जो प्रेम इमोशंस है, और सारे इमोशंस पूरा अपनी पति के प्रति लगाएं, और पति भक्त है तो निश्चित रूप में उनका भी उद्धार हो जाएगा। आगे भावज्ञ, भावज्ञ वर्तु सीता आरहत मनः, सीता जी ने क्या किया, हरण कर लिया, पूर्ण तरीके से हरण कर लिया, हरण कर लिया किनको, भगवान रामचंद्र का मन को। तो अभी पति पत्नी का, पति का अगर कोई स्त्री मन को हरण करना चाहती है तो सीता देवी ने आदर्श उन्हें प्रस्तुत किया। ये जो आदर्श को जो पालन करता है, जो स्त्री पालन करती है, वो निश्चित रूप में पति का मन को हरण कर सकती है, और इस प्रकार परिवार कुशल हो सकता है, समाज कुशल हो सकता है और परिवार शांत हो सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि द एंटायर वर्ल्ड वुड बी हेवन, स्वर्ग हो सकता है। देयर वुड बी नो लॉन्गर हेलिश कंडीशन विद इन मटीरियल वर्ल्ड। चाणक्य पंडित कहते हैं उस परिवार से उस पुरुष को भाग जाना चाहिए, उस पद को छोड़ देना चाहिए जिस घर में इस प्रकार की पत्ति ना हो। भार्याचा हितभाषिणी प्रियभाषिणी, जिस घर में भार्या वो प्रियभाषिणी नहीं होती है, बहुत कठोर वचन इस्तेमाल करती हैं, वो घर को छोड़ के भाग जाना चाहिए। अगर वो पुत्र उस घर में अगर मूर्ख है, उस घर को व्यक्ति को छोड़ के भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए नरक वही है। तो इसलिए भार्याचा हितभाषिणी यानी ये सारे जितने भी सद्गुणों संपन्न स्त्रियां होती है उनके द्वारा परिवार बनता है। परिवार जो है, घर जो है, वो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। घर जो बनता है उसको गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का अर्थ है उनकी वजह से घर है, और वो नहीं है तो घर नहीं है। तो पूरा घर का जो माहौल है वो स्त्री के ऊपर निर्भर करता है, पुरुष के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसा हमने कुछ और परिवार में बचपन में देखा था कि अगर मान लो कि एक लड़का बदमाश हो गया तो माता पिता उतना चिंतित नहीं होते थे। अगर खाली की लड़की अकेले शाम को कहीं जाके वापस आई बिना बोले, वो घर में इतना हंगामा हो जाता था। वो लड़का बाहर जाके खेल रहा है, कूद रहा है, रात को आ रहा है, बदमाश है, वो बराबर माता पिता को बराबर देखभाल नहीं करता, उल्टा जवाब देता है, वो माता पिता इतना चिंतित नहीं होते थे। लेकिन अगर लड़की थोड़ा सा भी कहीं कुछ कारण की वजह से कुछ भी कमी हो गया उनके आचरण में, उनके बोल में, तुरंत बड़ा टेंशन हो जाता है माता पिता को। क्यों? क्योंकि पूरा घर का जो वातावरण है, या इस घर में जिस घर में रहती है या जिस घर में जाने वाली है, वो घर का वातावरण या समाज का वातावरण, पूरा देश का वातावरण, पूरा संसार का वातावरण किसके ऊपर निर्भर है? स्त्रियों की शीलता के ऊपर निर्भर है। अगर स्त्रियों की शीलता के ऊपर समाज ध्यान दिया जाए, पूरा संसार शांत हो जाएगा। विश्व में जितने भी युद्ध हुआ है, युद्ध के पीछे कारण क्या है? स्त्री है। हर झगड़े के पीछे देखिए स्त्री ही कारण है, और उनको अगर ठीक किया जाए कोई झगड़ा नहीं। चाहे वो घर में झगड़ा हो, चाहे समाज में झगड़ा हो, चाहे विश्व में झगड़ा हो, हर एक झगड़ा या युद्ध जितने भी दोष है उनके पीछे स्त्री कारण है। इसका अर्थ क्या है? वो स्त्री अगर बराबर है सब ठीक है। स्त्री कारण है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके प्रति निंदा किया जा रहा है, नहीं, उनको ट्रेनिंग देके उनके अंदर शीलता अगर रहेगी सब ठीक रहेगी। उनके अंदर अशीलता होगी सारे संसार में उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए समाज में सारे शास्त्रों में बहुत सारे नियम बंधन स्त्रियों को दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगा संसार में पुष्यता नहीं रहेगी। तो इसलिए ये सब बातें खास करके मनु संहिता में अन्य अन्य धर्म एक दिवाल के धर्म स्थितियों में किस प्रकार स्त्रियों को अपना आचरण करना चाहिए, किस प्रकार पति की सेवा में लगे रहना चाहिए, हर एक चीज बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि कुशलास्तेष्वै व लोकस्थिति ही, ये लोक की जो स्थिति है वो उसके ऊपर आधारित है, कितना पवित्र है। अगर आपको एक समाज कितना उन्नत है अगर उसका वर्णन करना है या उसको देखना है, उस समाज में स्त्रियां अपने आप को कैसे व्यवहार करती है उसको खाली देखिए, तो उससे पता लगता है कि उस जगह का जो एडवांसमेंट कितना प्रगत है, कितना उन्नत संस्कृति है, उसको जानने के लिए कैसे स्त्रियां चलती हैं, कैसे स्त्रियां बोलती हैं उस समाज में, खाली वही देखिए। और देखेंगे तो पता लगता है कि हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लो क्लास है, थर्ड क्लास है, टेंथ क्लास है। पुरुषों का आचरण कभी ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, सुधर जाएगा। मान लो कि पुरुष गिर गया उठ के खड़ा हो जाएगा और कभी ना कभी सुधर जाएगा, लेकिन अगर स्त्रियों के आचरण में थोड़ा सा भी कमी हो जाता है तो इसका इफेक्ट बहुत लंबा छोड़ा रहता है। तो इसलिए इन सब बातों के ऊपर हमने चर्चा किया। तो सीता देवी एक पवित्र आइडियल वाइफ, रामचंद्र एक आइडियल हस्बैंड। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, हम तो सीता जी जैसे रहेंगे जब हमारे पति रामचंद्र जैसे हो तब। पहले रामचंद्र बनो बाद में सीता बनो। तो देखिए इधर एक छोटा सा आर्गुमेंट है, अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन ये कहावत भले ही वैदिक नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी मैन देर इज ए वुमन, सक्सेसफुल मैन देर इज ए सक्सेसफुल वुमन, देर इज ए वुमन। जो भी है, एक पुरुष के पीछे हमेशा एक स्त्री का हाथ होता है उनके आगे बढ़ने। तो अगर आपके पति को रामचंद्र जैसा बनेंगे तभी आप सीता जैसे बनेंगे अगर सोचेंगे, वो गलत है। आप जब सीता जैसे बनोगे अपने आप पति भी रामचंद्र हो जाएगा, सीता हो जाएगा। क्योंकि माँ जैसे चाहे उस बच्चे को सीता कर सकती है। अचेत में विवाह होने के बाद कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी को कि मैं एक इस घर का पत्नी हूं, ये सोचना चाहिए मैं इस घर की माँ हूं। खास करके छाणक पंडित कहते हैं कि पत्नी को जब पति को खिलाती है उस समय माँ जैसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आजकल तो होता नहीं है। इसके वजह से संसार में बहुत सारा दोष है। कुछ दिन पहले इसके बारे में चर्चा चल रहा था कि मातृत्व की कमी है, वो मातृत्व की कमी की वजह से तो संसार में बहुत बड़ा दोष हो रहा है, सारा उत्पात केवल इसी की वजह से हो रहा है। तो ये मातृत्व सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जैसे कोई विवाह करते हैं अपने आप को जो पति सोचता है, अपने आप को जो पति पत्नी सोचती है विवाह होने के बाद, तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता है। विवाह होने के बाद कभी ये सोचते ही पुरुष सोचता है कि मैं एक पिता हूं और स्त्री सोचती है कि मैं एक माँ हूं, तब वो परिवार का प्रगति होता है, तब कुशलता रहता है। अस्तित्व में विवाह यज्ञ के समय ये पुरोहित कहते हैं, अभी से आप विवाह हो गए हो तो किसके लिए? आपको पिता बनने के लिए, आपको माँ बनने के लिए, पति पत्नी बनने के लिए नहीं है। लेकिन आज के लिए पति पत्नी का बहुत प्रचार हो रहा है, पति 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 पत्नी क्या है, आप एक माँ हो, आप एक पिता हो, तब तुरंत एक क्या होता है, एक गुणों को प्रकाशित करने का स्वभाव आता है। नहीं तो वही शारीरिक स्तर में अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के सामान को एकत्रित करने में और झगड़े में इसी में पूरा गृहस्थ जीवन निकल जाता है और सारा संसार में अशांति रहता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? इनका प्रश्न बहुत व्यवहारिक है, हमने तो बहुत सारा थियोरेटिकल बता दिया है। तो इनका प्रश्न है कि कलयुग है, अभी ऐसा स्थिति है, हमारी आंदोलन में किस प्रकार व्यवहारिक कदम लेना चाहिए? सबसे पहला कदम है हमारे आंदोलन में, जो शास्त्र में जो बातें कहा गया है वो सत्य है, ये पहला बात, ये व्यवहारिक है। दूसरी बात, कम से कम ये विश्वास तो करें। दुर्भाग्य की बात है कुछ लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो तो पुराने जमाने के है, अभी हम आधुनिक जमाने में हैं, इसलिए हमको कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। कुछ पाश्चात्य देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन नेता के रूप में भी हैं, लीडर के रूप में भी हैं, उन लोगों के इस प्रकार के विचार हैं। लेकिन हमारे आचार्यों का और अन्य उन्नत भक्तों का ये विचार नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये कलयुग के हिसाब से हमको चलना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन को चालू किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये मिशन को चालू किसके लिए? कलयुग का प्रचार करने के लिए नहीं, कलयुग के दोषों को मिटाने के लिए, है कि नहीं, निकालने। तो सबसे पहला मान लीजिए आप कोई सिद्धांत है, कोई चीज है, उसको सत्य के रूप में स्वीकार करके उसके ऊपर विश्वास रखना, ये महत्वपूर्ण चीज है। और विश्वास ही नहीं है तो आगे क्या कदम लेंगे? पहला तो विश्वास, क्योंकि जितना हमारा श्रद्धा और विश्वास रहेगी इन सिद्धांतों के ऊपर, और उतना उसको आचरण करने के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, कोई भक्त है, इन सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए इस प्रकार का कोई प्रवचन दिया, तो उन्होंने कहे हैं ऐसा लागू नहीं होता है, अगर ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो लोग चाहते हैं कि अच्छा हमको मौका मिले कि दूसरा शरण मिल जाए। तो सबसे पहला है कि जो उस जगह का जो लीडर है उनका विश्वास, और वो जिस प्रकार इन चीजों को विश्वास करके लागू करने का स्ट्रिक्टली प्रयास करेंगे उतना धीरे धीरे से हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। जैसे कोई एक बच्चा बिगड़ गया है और उसको ठीक करने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, बहुत सावधानी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो बिगड़ा हुआ बच्चों को और बिगाड़े, नहीं, उसको सुधारना है, सुधारना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए समाज जो है भी बिगड़ गया है, यानी हमारे आंदोलन में जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं लोग, करीबन 20-25 साल की उम्र में जुड़ते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हैं। तो जब वो जुड़ते हैं उस समय इतना साल का जो उनका जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो चीजें हैं, जो खराब हालत है, उसको सुधारने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है। लेकिन आवर प्रिंसिपल्स एंड गोल्स शुड बी हाई, अगर उसको हम कम कर देंगे तो कभी उसको रीच नहीं करेंगे। हमारा जो आदर्श है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए, भले ही हम इन नीचे स्तर में हैं, और ऊंचा आदर्श है कभी ना कभी उधर पहुंचेंगे, आज नहीं तो कल। अगर आदर्श ही नीचा कर दिया तो क्या होगा? नहीं होने वाला, आदर्श को नीचा करेंगे, नहीं होने वाला नहीं, वो कैसे होना है वो देखना हमारा कर्तव्य है। अगर प्रभुपाद जी सोचते पूरा विश्व भर में चैतन्य में आपने कहा कि हम ये कृष्ण महान भक्ति का प्रचार होगा, पृथ्वी तिजता तेन गदार जिगाम तरत प्रचार हुए मोर नाम, चैतन्य में आपने कह दिया, लेकिन पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। अगर प्रभुपाद जी सोचे होते तो नहीं होता, प्रभुपाद जी ने सोचा वो कैसे होगा, प्रभुपाद जी ये नहीं सोचा कैसे नहीं होगा। अगर प्रगतिशील व्यक्ति जो है, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, वो ऐसा सोचता है कि कैसे होगा। अगर कोई सोचता है कैसे नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए जहां जहां लोगों ने प्रगति किया है, चाहे प्रचार क्षेत्र में हो चाहे कोई किसी क्षेत्र में हो, वो उन लोगों ने प्रगति किया है जो लोगों ने सोचा कैसा होगा, जो माने कि ये आदर्श है, वो लोग सोचते ये तो कैसे होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसलिए आदर्शों को कम कर दो। तो कुछ तो कुछ आदर्श होना चाहिए, इसलिए कम कर दो। अगर ऊंचा आदर्श रखेंगे और ये प्रयास करेंगे, ठीक है हम उस आदर्श पे पालन नहीं कर पाए, लेकिन कैसे करेंगे, योजना तो करना चाहिए, प्लान तो करना चाहिए। सबसे पहला बात यह है, प्रैक्टिकल स्टेप। बाद में अलग अलग जगह अलग अलग माहौल के अनुसार किस प्रकार उस स्तर तक पहुंचेंगे वो बात की बात है, दैट इज मैनेजमेंट। बट आइडल्स शुड बी हाई, गोल शुड बी लाइक प्रभुपाद ने कहा कि इफ यू वांट टू हंट ए रेनोसरस, अगर आपको शिकार करने जाना है कि आप क्या बोलते हैं रेनोसरस को, क्या बोलते, गेंडा बोलते हैं, एक हॉर्न वाला रहता है ना, उसको शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। हाथी को भी पकड़ सकते हो लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट टू हंट हंट ए रेनोसरस, अगर मान लो उसमें विफल भी हो गए तो लोग बोलेंगे हाँ इसने प्रयास किया जरूर, लेकिन जाके एक सीआर को मार के आया। तो अगर मान लो कि आपने शिकार भी कर गया सीआर को तो लोग बोलेंगे क्या सीआर को मार गया। लेकिन सो आवर आइडियल शुड बी हाई, गोल शुड बी हाई, हाउ टू अचीव इट यू शुड प्लान, ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथराष्ट्र भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय। वो सबके लिए है।